नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज का एपिसोड समर्पित है गुरु पूर्णिमा, ओशो को, और आज के एपिसोड में डिस्कोर्स एक ओमकार सतनाम वॉल्यूम नंबर 20 से लिया गया है। शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे मास्टर को डेडिकेटेड नंबर के साथ।
जैन फकीर कहते हैं कि परमात्मा के घर में जाना हो तो चोर की कला सीखनी पड़ती, क्योंकि वहां भी इतना ही होश चाहिए जैसा चोर घुसता है दूसरे के घर में कि टकरा न जाए, और भय को वहां भी रूपांतरित करना जरूरी है। जैसे अपना ही घर है ऐसे चोर घुसता है। जैन कथा है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि अब मुझे भी अपनी कला सिखा दे, क्योंकि अब क्या भरोसा। वो चोर इतना बड़ा चोर था कि कभी पकड़ा नहीं गया, तो सारी दुनिया जानती थी कि वो चोर है। उसकी खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने उसे एक बार बुला के सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी, दुनिया जानती, हम भी जानते हैं कि तू चोर है, तूने कभी इसे छिपाया भी नहीं, लेकिन तू कभी पकड़ाया भी नहीं, तेरी कला अद्भुत है। तो बूढ़े बाप ने कहा कि ये कला अब तू जानना चाहता है तो सिखा दूंगा, कल रात तू मेरे साथ चल। वो कल अपने लड़के को लेके गया, उसने सेंध लगाई, लड़का खड़ा देखता रहा। वो इस तरह सेंध लगा रहा इतनी तन्मयता से कि कोई चित्रकार जैसे चित्र बनाता हो, कि कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, कि कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो, ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन, इससे कम में काम भी नहीं चलेगा। वो मास्टर थीफ था, वो कोई साधारण चोर नहीं था, सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का कपड़ा है खड़ा हुआ, रात ठंडी नहीं है लेकिन कपकपी छूट रही उसकी रीढ़ में, बार बार घबराहट पकड़ रही। वो चारों तरफ चौंक चौंक के देखता है, लेकिन बाप अपने काम में लीन, उसने एक बार भी आंख उठा के यहां वहां नहीं देखा। चोरी की सेन तैयार हो गई, बाप बेटे को लेकर अंदर गया, बेटे के तो हाथ पैर कप रहे। जिंदगी में ऐसी घबराहट उसने कभी नहीं जानी, और बाप ऐसे चल रहा है जैसे अपना घर हो। वो बेटे को अंदर ले गया, उसने दरवाजे के ताले तोड़े, फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में, वस्त्रों की अलमारी में उसका ताला खोला और बेटे को कहा तू अंदर जा। बेटा अलमारी में अंदर गया, बहुमूल्य वस्त्र है, हीरे जवाहरात जड़े वस्त्र, और जैसे ही वो अंदर गया बाप ने ताला लगा के चाबी अपने खीसे में डाली, लड़का अंदर, चाबी खीसे में डाली, बाहर गया, दीवार के पास जाकर जोर से शोरगुल मचाया, चोर चोर, और सेन से निकल के अपने घर चला गया। सारा घर जाग गया, पड़ोसी जाग गए, लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया अंदर की ये क्या सिखाना हुआ, मारे गए, कोई उपाय भी नहीं छोड़ गया बाप निकलने के, चाबी भी साथ ले गया है, ताला भी लगा गया। घर भर में लोग घूम रहे हैं, सेन लग गई है और लोग देख रहे हैं, पैर के चिन्ह है। नौकरानी उस जगह तक आई जहां अलमारी में चोर बंद है, उसे कुछ नहीं सूझ रहा क्या करे, बुद्धि काम नहीं देती। बुद्धि तो वही काम देती है अगर जाना माना हो, किया हुआ हो। बुद्धि तो हमेशा बासी है, ताजे से बुद्धि का कोई संबंध नहीं। ये घटना ऐसी है, इतनी नई है कि ना तो कभी की, ना कभी सुनी, ना कभी पढ़ी, ना कभी किसी चोर ने पहले कभी की है कि शास्त्रों में उल्लेख हो, कुछ सूझ नहीं रहा, बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई। जहां बुद्धि बेकाम हो जाती वहां भीतर की अंतश्चेतना जागती है, अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया, और उसने इस तरह आवाज की जैसे चूहा कपड़े को कुतरता हो। ये उसने कभी की भी नहीं थी जिंदगी, वो खुद भी हैरान हुआ अपने पर। नौकरानी चाबियां खोज के लाई, उसने दरवाजा खोला और दिया लेके उसने भीतर झांका कि चूहा है शायद। जैसे उसने दिया लेके झांका, उसने दिए को फूंक मार के बुझाया, धक्का दे के भागा, सेंस से निकला, 10-20 आदमी उसके पीछे हो लिए, बड़ा शोरगुल मच गया, सारा पड़ोस जग गया। उसने जान छोड़ के भागा, ऐसा वो कभी भागा नहीं था। उसे ये समझ में नहीं आया कि भागने वाला मैं हूं, जैसे कोई और ही भाग रहा है। एक कुएं के पास पहुंचा, एक चट्टान को उठा के उसने कुएं में पटका। उसे ये भी पता नहीं कि ये मैं कर रहा हूं जिसे कोई और करवा रहा है। चट्टान कुएं में गिरी, सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई, समझा कि चोर कुएं में कूद गया। वो झाड़ के पीछे खड़े होकर सुस्ताया, फिर घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, उसने कहा जिस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा, ये सिखाना हुआ। अंदर गया बाप, कंबल ओढ़े आराम से सो रहा है। उसने कंबल खींचा, कहा कि क्या कर रहे हो, वो तो घुर्राटे ले रहा है। उसने जगाया, उसने कहा कि ये क्या है, मुझे मार डालना चाहते। बाप ने कहा तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे, मगर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत नहीं। बेटे ने कहा कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं सो ना पाऊंगा। तो बेटे ने सब हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बाप ने कहा बस तुझे कला आ गई, तुझे आ गई कला, ये सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा, मेरा खून तेरे शरीर में दौड़ता है, बस हो गया, तुरे राज मिल गया, क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो फंसेगा। वहां तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती, क्योंकि हर घड़ी नई है, हर बार नए लोगों की चोरी है, हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले कि उपद्रव में पड़ जाओगे, वहां तो अंतश्चेतना से चलना पड़ता है। ज़ेन फकीर इस कहानी का उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं ध्यान की कला भी चोरी जैसी, वहां इतना ही होश चाहिए, बुद्धि अलग हो जाए, सजगता हो जाए। जहां भय होगा वहां सजगता हो सकती, जहां खतरा होता है वहां तुम जाग जाते हो, जहां खतरा होता है वहां विचार अपने आप बंद हो जाते। इसलिए नानक कहते हैं भय धोखनी है, भय का उपयोग करो, भय है तो जागो, भय से सुरक्षा मत करो। हम क्या करते हैं, जहां भय होता है वहां सुरक्षा करते हैं। अगर भय है कहीं तो हम तलवार लेके जाते हैं, कि बंदूक साथ रख लेते हैं, कि चार नौकर रख लेते हैं कि जो हमारी रक्षा करें। अगर भय है तो हम बड़ा दीवाल बनाते हैं, पहाड़ खड़ा कर देते हैं दीवाल का, कि कोई भीतर ना आ सके। हम भय से सुरक्षा करते हैं, नहीं भय से सुरक्षा करने में तो हमारी चेतना और भी क्षीण हो जाएगी, हम तो और भी बेहोश हो जाएंगे। इसलिए जितने सुरक्षित लोग तुम पाओगे उतने ही निर्बुद्धि पाओगे। धनी आदमी में बुद्धि पाना जरा मुश्किल है, उसके पास सुरक्षा का इंतजाम है, किस लिए बुद्धि की जरूरत नहीं। दूसरे लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, बुद्धि का काम वो कर रहे हैं, उसे क्या जरूरत है। इसलिए धनी घरों में जब बेटे पैदा होते हैं तब तुम्हें हमेशा मंद बुद्धि पाओगे, वो मीडिया करोगे, उनमें कभी तुम चेतना की झलक ना पाओगे, तुम ऐसा ना पाओगे कि उनके भीतर प्रतिभा जलती। कोई जरूरत ही नहीं प्रतिभा की, नौकर चाकर में प्रतिभा चाहिए, उनमें प्रतिभा की क्या जरूरत है। नानक कहते हैं भय को धोखनी बना लो, भय से जागो। भय बड़ी अद्भुत स्थिति है, कंपन आएगा, रोआ रोआ थर थर हो जाएगा, वही तो मौका है कि जब सारा शरीर कपता हो तब भी तुम्हारी चेतना ना कपे, तब चेतना अकंप रहे, तो भय धोखनी हो गई। तपस्या अग्नि है, और जीवन में जहां जहां दुख है वहां वहां दुख को तुम तपश्चर्या समझना, और संकल्प पूर्वक उसे स्वीकार कर लेना। जब तुम बीमार पड़ो बीमारी को स्वीकार कर लेना, लड़ना मत, और तब तुम पाओगे कि बीमारी के बाद शरीर ही स्वस्थ नहीं हुआ, चेतना भी एक नए स्वास्थ्य को उपलब्ध हुई है। जब बीमारी आए तो तुम उसे देखना और स्वीकार रखना कि ठीक है, लड़ना मत, घबराना मत, मन को यहां वहां मत लगाना, अन्यथा तुम बीमारी के अवसर से चूक गए। ये सारे जीवन की सभी स्थितियां परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकती हैं, याद रखना, हर घटना उसके द्वार की सीढ़ी है, अगर तुम जानते हो, अगर तुम समझते हो तो उसका उपयोग कर लोगे। भाव ही पात्र है जिसमें अमृत ढलता है, और नानक कहते हैं विचार से नहीं, भाव से। भाव का अर्थ है जो विचार के पार तुम्हारी चेतना है। विचार तो मस्तिष्क में, भाव तुम्हारे हृदय में। भाव तर्क नहीं है, प्रेम है, उससे तुम गणित नहीं बिठा सकते, लेकिन भाव एक उद्रेक की अवस्था है, एक हर्षोन्माद की अवस्था है, और जब तुम भावित होते हो तब तुम जगत से उसकी गहराई से संयुक्त होते हो। विचार तो तुम्हारी सबसे ऊपरी सतह है, अगर ठीक से समझो तो घर के चारों तरफ लगाई गई फेंसिंग है, वो घर थोड़ी है, वो घर का आंतरिक कक्ष थोड़ी है। विचार तो फेंसिंग है, वो तो हमने पड़ोसियों से रक्षा के लिए लगा रखी, वो तो सीमा बनाती, तुम नहीं हो वो, तुम तो तुम्हारा भाव हो। लेकिन भाव से हम डर गए और हमने धीरे धीरे भाव अवरुद्ध कर दिया है, काट ही डाला है अपने को भाव से। हम हृदय की बात ही नहीं सुनते, हम तो बुद्धि की बात सुनते हैं, हम तो बुद्धि के तर्क से चलते हैं, बुद्धि जहां ले जाती है वहां हम जाते, और बुद्धि कहां ले जा सकती है। बुद्धि सबसे उथली चीज है तुम्हारे भीतर, इसलिए उथले तक ले जाती है, इसलिए तुम धन इकट्ठा करते हो, इसलिए तुम कचरा इकट्ठा करते हो, इसलिए तुम पद प्रतिष्ठा की चिंता करते हो। नानक कहते हैं भाव पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। तुम विचार से थोड़े हटो और भाव में थोड़े डूबो, बड़ा मुश्किल है। क्या करोगे जिससे तुम भाव में डूब जाओ? सुबह तुम उठे हो, हिंदू उठते थे पुराने दिनों में, सूरज के उगते ही वे सूर्य नमस्कार करेंगे, वे झुकेंगे सूरज के सामने, वे सूर्य का अनुग्रह स्वीकार करेंगे, वे धन्यवाद देंगे कि तुम फिर आ गए, एक दिन और मिला, फिर तुमने प्रकाश किया, फिर फूल खिलेंगे, फिर पक्षी गीत गाएंगे, फिर जीवन की कथा चलेगी, तुम्हारा धन्यवाद है, तुम्हारा अनुग्रह। वे सूर्य के सामने हाथ जोड़े सूर्य का प्रकाश पीते थे, और वो जो भाव अनुग्रह का भाव था वो उनके हृदय में एक पुलक भर देता था। नदी जाएंगे तो स्नान करने के पहले प्रणाम करेंगे, एक भाव का संबंध जोड़ेंगे नदी से, तब शरीर को भी नदी धोएगी ही, वो तो तुम्हारा शरीर भी धोती है लेकिन भीतर भी कुछ धुल जाएगा, क्योंकि वो स्नान करते समय सिर्फ स्नान ही नहीं कर रहे हैं, नदी पवित्र है, वो परमात्मा की है। एक भीतर भाव सघन हो रहा है, वे भोजन करेंगे तो भी पहले परमात्मा को स्मरण करेंगे, पहले भोग लगाएंगे, पहले उसे, पीछे स्वयं को। अन्न को हिंदुओं ने ब्रह्म कहा है, वो है भी क्योंकि तुम्हें जीवन देता है। हिंदुओं ने हर चीज को परमात्मा की स्मृति बना ली, हर जगह से उसके भाव की चोट पड़नी चाहिए, उठते बैठते सोते हर जगह उसकी याद। हमने सब इनकार कर दिया, हमने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, नदी में नहा रहे हो, नदी सिर्फ पानी है और पानी में क्या है, H2O, कहां का भगवान? सूरज का प्रणाम कर रहे हो, सूरज कुछ भी नहीं है, आग का गोला, किसको प्रणाम कर रहे हो? अगर ये बात सच है, सूरज आग का गोला है, नदी सिर्फ H2O है, तो फिर कहां तुम भगवान को पाओगे? फिर पत्नी क्या है? पत्नी भी कुछ नहीं है, आड़मांस। फिर बेटा क्या है? मांस मज्जा। फिर तुम कहां भाव को जगाओगे? भाव को जगाने का अर्थ है कि जगत सचेतन है, जो दिखाई पड़ता है वहां समाप्त नहीं है, उससे भीतर है, बहुत गहरा है। भाव का अर्थ है कि जगत में एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। माना कि बच्चा हाड़मांस है, हाड़मांस ही नहीं है, उसके भीतर कुछ अवतरित हुआ है, उसके भीतर भगवान आए, वो अतिथि है हमारे घर में। वृक्ष माना कि वृक्ष है, लेकिन वृक्ष ही नहीं, उसके भीतर भी कोई बढ़ रहा है, उसके भीतर भी कोई आनंदित होता है, दुखी होता है, उसके भीतर भी मूड भाव संवेग आते, उसके भीतर भी जागरण तंद्रा आती। अभी वैज्ञानिकों ने बड़ी खोजबीन की है कि वृक्ष भी उतना ही अनुभव करता है जितने मनुष्य, और वृक्ष की अनुभूति बड़ी गहरी है, उसकी प्रतीति गहरी है, वो उतना ही संवेदनशील है जितने हम। चट्टाने भी संवेदनशील है, हर जगह संवेदना है, और तुम संवेदना खो दिए हो, तुम भाव खो दिए हो, इसलिए जगत बिल्कुल उदास, रौनकहीन, अर्थहीन मालूम पड़ता है। जैसे ही तुम्हारा भाव जगेगा वैसे ही जगत रूपांतरित हो जाता है। जगत तो यही रहता है, सब कुछ यही रहता है, फिर भी सब बदल जाता है क्योंकि तुम बदल जाते हो। भाव ही पात्र है जिसमें अमृत ढलता है, और नानक कहते हैं तुम्हारा भाव ही पात्र बनेगा जिसमें परमात्मा का अमृत ढलेगा। अगर तुम्हारे पास भाव नहीं तो तुम परमात्मा से वंचित रह जाओगे। भाव को जगाओ, लेकिन भाव को जगाने में एक ही बाधा है कि भाव बुद्धि से विपरीत है, बुद्धि से भिन्न। संसार में बुद्धि कारगर है, भाव कारगर नहीं है। धन कमाना हो तो भाव से न कमा सकोगे, लूट जाओगे। बुद्धि कहेगी कोई भी लूट लेगा। अगर राजनीति के शिखर पर चढ़ना हो तो भाव से न चढ़ सकोगे, वहां तो कठोरता चाहिए, वहां तो प्रगाढ़ आक्रामक विचार चाहिए, वहां शांति और मौन काम न देंगे, वहां हृदय को तो भूल ही जाना कि जैसे वो है ही नहीं। मैंने सुनी है भविष्य की एक कहानी कि ऐसा हुआ भविष्य में कि आदमी के सभी शरीर के अंग, हृदय, सिर, फेफड़े, गुर्दे सभी स्पेयर पार्ट्स की तरह मिलने लगे। मिलने ही लगेंगे एक दिन कि तुम्हारा गुर्दा खराब हो गया, तुम गए वर्कशॉप में और तुमने अपना गुर्दा बदलवा लिया और चल पड़े। जैसे कि मोटर को ले जाते हो, चीज बिगड़ गई, बदल ली, चल पड़े। एक आदमी का हृदय खराब हो गया तो गया दुकान पर जहां हृदय बिकते थे, कई तरह के हृदय थे वहां, तो उसने पूछा कि इनके दाम और इनमें भेद क्या है। तो उस आदमी ने कई तरह के हृदय बताए कि ये एक मजदूर का हृदय है, ये एक किसान का हृदय है, ये एक गणितज्ञ का हृदय है, ये एक राजनीतिज्ञ का हृदय है और इसके दाम सबसे ज्यादा है। तो आदमी ने कहा इसका क्या मतलब। तो उसने कहा इसका उपयोग कभी नहीं हुआ, ब्रांड न्यू राजनीतिक का हृदय है, इसका कभी उपयोग नहीं हुआ, ये बिल्कुल बिना उपयोग के पड़ा रहा है, इसलिए इसके दाम ज्यादा है। ये कवि का हृदय है, इसके दाम सबसे कम है, इसका बहुत उपयोग हो गया, ये बिल्कुल सेकंड हैंड है। राजनीतिक को हृदय की जरूरत क्या है, उसका उपयोग खतरनाक है। वहां तुम अपने हृदय का उपयोग धीरे धीरे शुरू करो, धीरे धीरे ही हो सकता है। एक ही बात याद रखो कि विचार को थोड़ा हटाओ, भाव को थोड़ा लाओ, वृक्ष के पास बैठो, फूल के पास बैठो, विचार मत करो कि ये गुलाब है, नाम से क्या लेना देना, ये विचार मत करो कि बड़ा गुलाब है, बड़े छोटे से क्या लेना देना। इसमें एक अदृश्य सौंदर्य है, तुम उसे पियो, सोचो मत उसके संबंध में। तुम फूल के पास बैठ के मौन फूल के साथ रहो, जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे हृदय में जो क्रिया चल रही है उसने तुम्हारे मस्तिष्क की क्रिया को बंद कर दिया है, क्योंकि दो में से एक ही जगह जीवन ऊर्जा चल सकती है। जैसे ही तुम्हारे हृदय में पुलक आएगी और वो पुलक अनुभव से ही जानी जा सकती, कोई नहीं कह सकता क्या है वो पुलक, वो गूंगे का गुड़ है, क्योंकि हृदय के पास कोई भाषा नहीं है। तुम बैठो फूल के पास, तुम सुनो पक्षी का गीत, तुम वृक्ष से पीप टेक के बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, उसकी खुरदरी देह को अनुभव करो। तुम रेत पर लेट जाओ, आंख बंद कर लो, रेत के शीतल स्पर्श को अनुभव करो। तुम झरने में बैठ जाओ, बहने दो पानी को तुम्हारे सिर पर से, और तुम्हें उसका प्रीतिकर स्पर्श अपने में डूबने दो। तुम सूरज के सामने खड़े हो जाओ आंख बंद करके, छूने दो उसकी किरणों को तुम्हें, और तुम सिर्फ अनुभव करो, सोचो मत कि क्या हो रहा है, तुम सिर्फ अनुभव करो, जो हो रहा है उसे होने दो और हृदय को पुलकित होने दो। तुम जल्दी ही पाओगे कि एक नई गतिविधि शुरू होती है हृदय में, जैसे एक नया यंत्र जो अब तक बंद पड़ा था सक्रिय हो गया, एक नई धुन बजती तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन का केंद्र बदल जाता है, उसी बदले हुए केंद्र पर अमृत की वर्षा होती। सत्य के टकसाल में शब्द का सिक्का गढ़ा जाता है। नानक जिसको शब्द कहते हैं वो ओंकार, तुम्हारे शब्द नहीं। सत्य के टकसाल में और तुम्हारे जीवन में जितनी सच्चाई आती जाएगी उतना ओंकार ढलेगा, उतना ही तुम ओंकार के रूप में लीन होते जाओगे। झूठ से तुम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो, वो बड़ा नुकसान नहीं है। झूठ से तुम सत्य की टकसाल नहीं बन पाते जहां के जीवन का परम अनुभव ढलेगा, जहां ओंकार की धुन बजेगी, वही असली नुकसान है। जिन पर उसकी कृपा दृष्टि होती है वे ही यह काम कर पाते हैं, लेकिन नानक हर पद के बाद ये बात भूलते नहीं दोहराना कि याद रखना तुम्हारी वजह से ये न होगा। तुम कहीं मत अकड़ जाना कि मैं बड़ा भक्त, कि मैं बड़ा भावुक, कि मेरा हृदय बड़ा तरंगित, कि मैं बड़ा तपस्वी, कि मैं बड़ा संयमी। नहीं, नानक कहते हैं ये तो तुम याद ही रखना कि जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होती वे ही ये काम कर पाते हैं। जिन कौ नदरी कर्मु तिनकार, नानक नदरी नदरी निहाल। नानक कहते हैं वे उस कृपा दृष्टि से निहाल हो उठते हैं। पवन गुरु है, पानी पिता है और महान धरती माता है। रात और दिन दाई और सेवक उनके साथ सारा जगत खेल रहा है। शुभ और अशुभ कर्म उसके दरबार में धर्म के द्वारा बांचे जाते हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं, जिससे कोई उसके निकट है और कोई दूर है। नानक कहते हैं जिन्होंने उसके नाम का ध्यान किया और सच्चाई से श्रम किया उनके मुख उज्जवल होते हैं और उनके साथ अनेकों मुक्त हो जाते हैं। पवनु गुरु पानी पिता माता धरती महत, दिवस रात दुई दाय दाइया, खेले जगत सकल जगत, चंगाइया बुराइया वाचे धर्म हदूरी, कर्मी आपा आपनी के नेड़े के दूर, जिन नाम ध्याया गए मस्कति धाल, नानक ते मुख उजले के ते छूटी नाल। नानक के प्रतीक मूल्यवान हैं, बहुत भाव से चुने हैं। पवन गुरु कहते हैं, गुरु तो पवन की भांति है, दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव किया जा सकता है। जो देखने जाएंगे वो चूक जाएंगे। पवन दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव किया जा सकता है, उसका स्पर्श ही जाना जा सकता है। तुम उसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, गुरु को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। और जो गुरु शिष्यों की मुट्ठी में बंद हो, जान लेना गुरु नहीं। तुम 100 में 99 गुरु शिष्यों की मुट्ठियों में बंद पाओगे। शिष्य उन्हें चला रहे हैं, शिष्य बताते हैं क्या करना उचित क्या करना उचित नहीं। शिष्य तय करते कि क्या आचरण क्या अनाचरण, शिष्यों की पंचायतें जो साधुओं को चलाती, पंचायत तय करती कि कौन साधु योग्य कौन साधु अयोग्य, पंचायत तय करती किस साधु को पूजो किसको बाहर निकाल दो। बड़ी उल्टी दुनिया है हमारी। गुरुओं को हम निर्णय करते हैं कि तुम ऐसा उठो ऐसे बैठो ऐसे चलो, और जो गुरु इससे राजी हो जाते वो गुरु नहीं है, इसलिए राजी हो जाते। तुम अपने मठों में आश्रमों में गुरुओं को न पाओगे, गुरुओं के नाम से चलते हुए झूठे सिक्के पाओगे। गुरु को कोई मुट्ठी में बांध नहीं सकता। तुम महावीर को बुद्ध को नानक को चला नहीं सकते, वे अपनी मर्जी से चलते। पवन अपनी मर्जी से बहता है, जब बहता है बहता है, जब नहीं बहता नहीं बहता। और तुम मुट्ठी बांधोगे तो पवन तुम्हारे हाथ में था वो भी बाहर हो जाएगा। जो मुक्त करने आए हैं उन्हें बांधा नहीं जा सकता। जिनसे तुम मुक्ति खोज रहे हो उनके लिए तुम कैसे बांध सकते हो? इसलिए नानक कहते हैं पवन गुरु, पानी पिता, धरती माता। धरती के बिना तुम्हारा देह नहीं हो सकती, इसलिए माता अत्यंत जरूरी है, उसके बिना कोई जन्म नहीं है। लेकिन सबसे स्थूल है पृथ्वी, इसलिए माता तो पशु पक्षियों में भी होती, पिता नहीं होता। पिता के लिए तो बड़ी संस्कार की सभ्यता की अवस्था चाहिए। पिता मन है, मां देह है। जहां जहां देह है वहां वहां मां है, लेकिन पिता नहीं है। जहां मन का जन्म हुआ वहां पिता शुरू होता है। तो पिता बड़ी नई घटना है, सिर्फ मनुष्यों में पिता है, और वो भी बहुत प्राचीन नहीं है, कोई 5,000 साल ज्यादा से ज्यादा। उसके पहले पिता नहीं था, क्योंकि स्त्री सामाजिक संपदा थी, अनेक लोग उसे भोगते थे, पिता का पता चलाना मुश्किल था, वो ठीक पशुओं जैसी ही स्थिति थी। तो जान के तुम्हें हैरानी होगी कि काका अंकल पुराना शब्द है पिता से। उन दोनों चाचा तो होता था, काका होता था, अंकल होता था, लेकिन पिता नहीं होता था। क्योंकि जितने भी बड़ी उम्र के लोग होते थे, पिता होने की योग्यता के लोग होते थे, वो सभी काका थे, और पता नहीं उनमें कौन पिता था इसका कुछ पता नहीं था। पिता बहुत बाद में आया, क्योंकि पिता मन है, संस्कार है, सभ्यता है। इसलिए पिता एक सामाजिक उपलब्धि है, प्राकृतिक नहीं। प्रकृति में पिता की कोई भी पहचान नहीं है। सिर्फ समाज जब बहुत विकसित होता है तो पिता आता है। इसलिए नानक कहते हैं मां तो धरती जैसी है, उसके बिना तो कोई हो नहीं सकता, सबसे स्थूल है वो। पानी पिता, और पिता का संबंध ज्यादा तरल है, मां का संबंध ज्यादा स्थूल है। तरलता की खबर देने के लिए वो कहते हैं पानी, और पवन गुरु, ये तीन सीढ़ियां हैं। मां धरती बहुत स्थूल मेटेरियल पदार्थ, इसलिए स्त्री को हमने प्रकृति कहा है। उसके बाद की ऊंचे एक स्थिति है जहां पिता का संबंध शुरू होता है, सभ्यता समाज संस्कृति। और उससे भी ऊंची एक स्थिति है जहां गुरु का संबंध शुरू होता है, धर्म योग तंत्र। अगर तुम मां पर ही रुक गए तो करीब करीब पशु जैसे रह जाओगे, अगर पिता पर रुक गए तो मात्र मनुष्य रह जाओगे। जब तक तुम गुरु तक न पहुंचो तब तक तुम्हारे आत्मवान होने की कोई स्थिति बनती नहीं। तो तुम्हारे जीवन की तीन सीढ़ियां हैं। मां तक तो सभी पशु पहुंच जाते हैं, पिता तक सभी मनुष्य पहुंच जाते हैं, गुरु तक बहुत थोड़े से लोग पहुंच पाते हैं। और जब तक तुम गुरु तक न पहुंचो तब तक तुम्हारी पूरी ऊंचाई ना आएगी, क्योंकि मां शरीर का संबंध, पिता मन का संबंध, गुरु आत्मा का संबंध है। वो इस जगत में सबसे बड़ा संबंध है। उससे न तो गहरा कोई संबंध है, न ऊंचा कोई संबंध है। इसलिए जो लोग बिना गुरु के हैं करीब करीब अधूरे हैं। गुरु के साथ ही तुम पूरे होते हो। इस जगत की यात्रा पूरी होती और दूसरे जगत की यात्रा शुरू होती। गुरु इस जगत का अंत और दूसरे जगत का प्रारंभ है, वो द्वार है। इसलिए तो नानक ने अपने मंदिर को गुरुद्वारा कहा। द्वार का मतलब होता है एक दुनिया समाप्त, दूसरी दुनिया शुरू। इस तरफ एक दुनिया, उस तरफ दूसरी दुनिया, गुरु बीच में। रात और दिन दाई और सेवक हैं, उनके साथ सारा जगत खेल रहा है। समय के साथ सारा जगत खेल रहा है। खेलने वाले दो तरह के, एक जिन्होंने नौकर को और सेवक को मालिक बना लिया है, और एक जिन्होंने नौकर को और सेवक को नौकर ही समझा है। समय तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा गुलाम है। तुम उसका उपयोग करो, लेकिन समय को तुम अपना उपयोग मत करने दो। हालत बिल्कुल उल्टी है, समय तुम्हारा उपयोग कर रहा है। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं ध्यान कर रहे हैं लेकिन समय नहीं। ध्यान करने के लिए समय नहीं, समय तुम्हारा मालिक है या तुम समय के मालिक हो? अगर तुम समय के मालिक हो तो बहुत समय है ध्यान करने के लिए। अगर तुम गुलाम हो तो कोई समय नहीं, क्योंकि सिनेमा देखने के लिए तुम्हारे पास समय, सर्कस जाने के लिए समय, सब चीजों के लिए समय। बहुत मजे की बात है, यही आदमी सुबह बैठा अखबार पढ़ रहा हो घर में, इससे पूछो क्या कर रहे हो, ये कहता है समय काट रहे हैं। यही आदमी समय काटता है, ज्यादा समय काटता है। समय काटे नहीं कटता, लोग कहते हैं जब ध्यान की बात आती तब वो कहते हैं समय का। वही के वही लोग, ऐसे समय बहुत है काटे नहीं कटता। टेलीविजन देखो, क्लब जाओ, फिर भी बच रहता है। कहां बिताओ ये सवाल उठता है। छुट्टी के दिन लोग बड़ी कठिनाई में होते हैं, क्या करो। छुट्टी के दिन बिल्कुल थक जाते हैं कुछ ना कर करके। सोमवार को बड़े प्रसन्न होते हैं, जब सुबह वो दफ्तर की तरफ जा रहे हैं तब बड़े प्रसन्न कि किसी तरह रविवार टल गए, या रविवार कुछ उपद्रव कर लेते हैं, 10-50-100 मील का चक्कर लगाएंगे, समुद्र तट पे जा रहे हैं, पहाड़ी पे जा रहे हैं। वो जो दिन एक दिन विश्राम का मिला था उसको भी काम में। अमेरिका में कहावत है कि छुट्टी के दिन लोग इतने थक जाते हैं जितने कि कभी भी काम के दिन नहीं थकते। समय तुम्हारा उपयोग कर रहा है। अगर तुम मालिक हो तो समय बहुत है, अगर तुम गुलाम हो तो बिल्कुल नहीं है। गुलाम के पास क्या हो सकता है, समय भी नहीं। नानक कहते हैं कि उनके साथ सारा जगत खेल खेल रहा है। खेल दो तरह का चल रहा है, एक जो मालिक है वो समय का उपयोग कर लेते हैं, वो इस समय में ही उसको जानने के लिए रास्ता बना लेते हैं जो समय के बाहर है, वही ध्यान है। अन्यथा दूसरे लोग हैं जो समय के द्वारा उपयोग कर लिए जाते। मैंने सुना है एक भिकमंगा अनाज की दुकान पर गया और उसने कहा कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और आज तो तुम्हें अनाज उधार ही देना पड़ेगा। दुकानदार को दया आ गई, उसने कहा ठीक है अनाज तो मैं दे देता हूं, लेकिन एक बात ख्याल रखना, मुझे थोड़ा शक होता है, गांव में सर्कस आया हुआ है, तुम इसको बेच के सर्कस मत देख लेना। उस आदमी ने कहा तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, सर्कस देखने के पैसे मैंने पहले ही बचा लिए। व्यर्थ के लिए तो तुम पहले ही समय बचाए हुए हो, सार्थक के लिए समय नहीं बचता। समय के मालिक बनो तो ही समय के पार जा सकोगे। शुभ और अशुभ कर्म उसके दरबार में धर्म के द्वारा बांचे जाते हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं, जिससे कोई उससे निकट है और कोई दूर है। परमात्मा सबके पास है, उसकी तरफ से न तो तुम दूर हो न तुम पास हो, वो सबके पास एक जैसा है, लेकिन तुम्हारी तरफ से तुम दूर हो या पास हो, तुम्हारे कर्म के कारण या तो तुम निकट हो या दूर हो। कर्मी आपा आपनी के नेड़े की दूर। तुमने अगर ऐसे कर्म किए हैं जो तुम्हें सुलाते हैं, मूर्छित करते हैं, तो तुम पीठ किए खड़े हो। सूरज वही है, तुम पीठ किए खड़े हो। तुमने अगर ऐसे कर्म किए हैं जो तुम्हें जगाते हैं, होश से भरते, तो तुमने सूरज की तरफ मुंह कर लिया, खड़े तुम वही हो। सूरज भी वही है, तुम भी वही हो। फर्क सिर्फ पड़ जाता है कि तुम्हारी पीठ सूरज की तरफ है तो बहुत दूर, मुंह सूरज की तरफ है तो बहुत पास। परमात्मा तुम्हारे सदा एक सा ही पास है। उसकी नजर में नानक कहते हैं, न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई पात्र न कोई अपात्र। अगर तुम अपात्र हो तो अपने ही कारण, अपने में थोड़ा फर्क करो और तुम पात्र हो जाओगे। क्योंकि जो पात्र हैं उनमें और तुम में सिर्फ एक ही फर्क, वे परमात्मा की तरफ उन्मुख हैं, तुम परमात्मा की तरफ विमुख हो। नानक कहते हैं, जिन्होंने उसके नाम का ध्यान किया और सच्चाई से श्रम किया, उनके मुख उज्जवल होते और उनके साथ अनेकों मुक्त होते। नानक कहते हैं, जब भी कोई मुक्त होता है, अकेला ही मुक्त नहीं होता, क्योंकि मुक्ति इतनी परम घटना है और मुक्ति एक ऐसा महान अवसर है, एक व्यक्ति की मुक्ति भी, कि जो भी उसके निकट आते हैं वे भी उस सुगंध से भर जाते हैं, उनकी जीवन यात्रा भी बदल जाती है। जो भी उसके पास आ जाते हैं वे भी उस ओंकार की धुन से भर जाते हैं, उनको भी मुक्ति का रस लग जाता है, उनको भी स्वाद मिल जाता है थोड़ा सा, और वो स्वाद उनके पूरे जीवन को बदल देता है। जिन्होंने उसका ध्यान किया, सच्चाई से उसके लिए श्रम किया, उनके मुख उज्जवल होते हैं, उनके भीतर एक प्रकाश जलता है जो अगर तुम प्रेम से देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ सकता है। तुम अगर पूजा के भाव से पहचानो तो तत्क्षण पहचान आ सकता है। उनके भीतर एक दिया जलता है और उस दिए की रोशनी उनके चारों तरफ पड़ती है। इसलिए तो हमने संत पुरुषों अवतारों के चेहरे के आसपास आभा का मंडल बनाया है। वह आभा का मंडल सभी को दिखाई नहीं पड़ता, उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनके भीतर भाव की पहली किरण उतर आई, उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास श्रद्धा की पहचान है। और जिनको वो दिखाई पड़ता है वे इस जले हुए दिए से अपना बुझा हुआ दिया भी जला लेते। जब भी कोई एक मुक्त होता है तो हजारों उसकी छाया में मुक्त होते हैं। एक व्यक्ति की मुक्ति कभी भी अकेली नहीं घटती, घटी नहीं सकती, क्योंकि जब इतना परम अवसर मिलता है तो ऐसा व्यक्ति बहुतों के लिए द्वार बन जाता है। तुम अपने श्रद्धा और भाव को जगाए रखना ताकि तुम्हें गुरु पहचान आ सके, और गुरु को जिसने पहचान लिया उसने इस जगत में परमात्मा के हाथ को पहचान लिया। गुरु को जिसने पहचान लिया उसने इस जगत में जगत के जो बाहर है उसको पहचान लिया, उसे द्वार मिल गया। द्वार मिल जाए तो सब मिल गया है, खोया तो कभी भी कुछ नहीं। द्वार से गुजर के तुम्हें अपनी पहचान आ जाती। जो प्रकाश सदा से तुम्हारा है उसकी सुरति आ जाती, जो संपदा सदा से तुम्हारे पास है आविष्कार हो जाता है। जो तुम सदा से ही थे, जिसे तुमने कभी खोया न था, गुरु तुम्हें उसकी पहचान करा देता है। कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव, किसका छू चरण। अब दोनों सामने खड़े, कबीर बड़ी दुविधा में पड़ गए, किसके छू चरण। अगर परमात्मा के चरण पहले छू तो गुरु का असम्मान होता है, अगर गुरु के चरण पहले छू तो परमात्मा का असम्मान होता है। तो नानक कहते हैं, किसके चरण छू। फिर वे गुरु के ही चरण छूते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। जब वे दुविधा में पड़े हैं तब गुरु ने कहा कि तू गोविंद के ही चरण छू। क्योंकि मैं यहीं तक था। ये बड़ी मीठी बात है। जब नानक जब कबीर दुविधा में पड़े हैं तो गुरु ने कहा कि इशारा किया कि तू गोविंद के चरण छू, मैं यहीं तक था, मेरी बात यहीं समाप्त हो गई। अब गोविंद सामने खड़े, अब तू उन्हीं के चरण छू। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए, लेकिन नानक ने चरण फिर गुरु के ही छुए, क्योंकि उसकी ही बलिहारी है जिसने गोविंद बताया। श्रद्धा हो तुम्हारे पास तो तुम पहचान लोगे। बस श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। विचार से न कोई कभी पहुंचा है, न कोई कभी पहुंच सकता है। तुम वो असफल चेष्टा मत करना, वो असंभव है, वो कभी नहीं हुआ और तुम भी अपवाद नहीं हो सकते हो। और गुरु सदा मौजूद है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि संसार के इन अनंत लोगों में कुछ लोगों से न पा लेते हो, कुछ लोग हमेशा ही उसे पा लेते। इसलिए कभी भी धरती गुरु से खाली नहीं होती। दुर्भाग्य ऐसा कभी नहीं आता कि धरती गुरुओं से खाली हो, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कभी कभी आ जाता है कि पहचानने वाले बिल्कुल नहीं होते। बस इतना ही।
इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। आज के एपिसोड में हमने म्यूजिक मिलरेपा, देवा प्रेमल और मितेन की एल्बम से सुना। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का, लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का, तुम्हारे दर्शन की some